ओम शांति। आज हमारे बीच में वैद्यनाथ शिव से प्राप्त ज्ञान औषधियों से संपन्न तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाने वाली आध्यात्मिक डॉक्टर पधारी है। ऐसी हमारी डॉक्टर सविता दीदी जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। अल्पायु से ही आपका मन समाज सेवा की भावनाओं से ओतप्रोत था। वर्ष 1974 में मात्र 9 वर्ष की आयु में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वर्ष 1985 में आपने प्रथम बार अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की। बाबा से मिली प्रेरणाओं के अनुसरण करते हुए आपने लौकिक पढ़ाई MBBS पूर्ण करने के बाद वर्ष 1989 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। लगभग 10 वर्ष ग्लोबल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में आपने अपनी विशेष सेवाएं दी। फिर वर्ष 2000 से 2007 तक विद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु व्यक्तिगत चिकित्सक के तौर पर उनके अंग संग रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने दीदी जी की बहुत सेवा की। साथ साथ वर्ष 2001 से राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की महिला विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप सेवाएं दे रहे हैं। आपने भारत के अतिरिक्त यूके, यूएसए, जापान, रशिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड आदि अनेक देशों में बाबा के ज्ञान की सुवास फैलाने की सुंदर सेवा की है। आप एक प्रखर वक्ता है। आप लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी एजुकेट करते हैं और मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान का आप एक हिस्सा रहे। आपने अनेक नेशनल एवं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। नारी सशक्तिकरण करते हुए आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा का नारा देते हुए सामाजिक समानता आदि विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट किया है। ऐसे शांत शीतल मधुर एवं सरलचित आत्मा को अपने बीच पाकर हम स्वयं को गर्वित महसूस कर रहे हैं और आज आपका विषय है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं दीदी जी से आग्रह करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय सविता दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। सभी को मधुबन में पांडव भवन में कैसा लग रहा है? जो पहली बार आए हैं पांडव भवन में, पहली बार रहकर भट्टी कर रहे हैं, आए हैं, आते तो रहते हैं चार धाम करने, लेकिन रहकर पहली बार भट्टी कर रहे हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, मेजॉरिटी पहली बार यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ हमें योग लगाना नहीं पड़ता है, योग अपने आप लग जाता है ना। बाबा की इस भूमि की विशेषता है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, फिर हमारी दादियों की भी तपस्या भूमि, कर्म भूमि रही है। तो इसका वायुमंडल इतना पावरफुल है, इतना पवित्र है कि इसमें आते ही हम उसको अनुभव करते हैं। तो जैसा कि विषय है, हम सभी बाबा के बच्चे राज योगी हैं, राज ऋषि हैं। बाबा कहते हैं बाबा आपको प्रजा योगी नहीं बनाता है, क्या बनाता है? राज योगी। तो राज योगी माना ही जिसका स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य है, यानी स्वयं पर राज्य है। योग अभ्यास से हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, शांत होती हैं, ये हमेशा बाबा मुरलियों में कहते हैं। और खास जो देही अभिमानी होते हैं उनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। तो कर्मेंद्रियों पर अधिकार, बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारी कर्मेंद्रियां चले तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। तो बाबा कहते सर्वश्रेष्ठ हमारा है स्वराज्य, उसके बाद है फिर भविष्य में विश्व का राज्य, और फिर द्वापर कलियुग का स्टेट का राज्य। द्वापर कलियुग में फिर विश्व का राज्य नहीं रहता, विश्व राज्य अधिकारी से स्टेट राज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, राजयोगी बने हैं, वो कभी ना कभी राजा तो बनने वाले हैं, लेकिन कब? सतयुग में बनने वाले हैं, सतयुग आदि से बनने वाले हैं, या त्रेता में बनने वाले हैं, या त्रेता में भी लास्ट में, या फिर वो भी पार करके द्वापर में, द्वापर में जैसे कहा स्टेट का राज्य होता है, या फिर द्वापर भी पार करके कलयुग में लड़ाई झगड़े वाले राज्य में, पर कभी ना कभी राज्य अधिकारी जरूर बनने वाले हैं। तो ये बाबा की गारंटी है ना? तो हम सभी राजा बनने वाले हैं, इसीलिए भगवान को हमारे ऊपर नाज है। बाबा कहता है ना कि कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जिसका हर बच्चा राजा बनने वाला बच्चा हो, या हर बच्चा राजा बच्चा हो। माँ बाप अपने बच्चों को राजा बच्चा कहते हैं, पर वो राजा बच्चा होते नहीं हैं क्योंकि राजा बनने वाले नहीं है, लेकिन हम बाबा के बच्चे सभी कभी ना कभी राजा जरूर बनने वाले हैं। तो हमारी जो स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों के राजा यानी उनको हम अपने अधिकार से चलाने वाले, उनको वश में करने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने वाले। तो उसमें स्थूल सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियां हैं हमारी। सूक्ष्म इंद्रियों में मन बुद्धि संस्कार या आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और स्थूल इंद्रियां तो हम सब जानते हैं। स्थूल में कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, मुख और हाथ पांव, ये हमारे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो है सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना। सूक्ष्म इंद्रियां जो हमारा मन है, सबसे ज्यादा चंचल मन है ना, इसीलिए इसको बेलगाम घोड़ा कहते हैं, या वायु के वेग के समान मन हमारा कंट्रोल में नहीं आता है ना? या मन को जहां हम लगाना चाहें, मन पर अधिकार माना, मन को जिस स्थिति में स्थित करना चाहें, जिस शुद्ध संकल्प में मन को लगाना चाहें, या अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहें, बिंदु रूप स्थिति बनाना चाहें, तो जो स्थिति बनाना चाहें उस घड़ी उस समय ही मन उसमें एकाग्र हो जाए। एक मिनट के बजाय तीन चार मिनट ना लगे, सोचा और हुआ, तभी कहेंगे कि उसी समय हमारा मन उस स्थिति में चला गया। और फिर जितना समय हम टिकना चाहते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, अभी तो हम भट्टी करते हैं तो 1-1 घंटा योग भी करते हैं, तो एक ही स्थिति में एक ही लगन में मगन 1 घंटा मन रहे, जरा भी इधर उधर किसी की याद या किसी बात में हमारी बुद्धि न जाए, तो हम कहेंगे मन, मन हमारा अधिकार में, मन के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है। कोई कारण से वेस्ट थॉट शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर, है ना, हो बातें तो आती रहती हैं, तो वेस्ट थॉट का मतलब क्यों क्या में मन चला गया, और हमें पता है कि इन थॉट्स में मन नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा है ना, नेगेटिव सोचना है ना वेस्ट सोचना है, तो मुझे स्टॉप करना है मन को, तो मैंने कहा फुल स्टॉप, तो स्टॉप लग जाए। हाँ, हम चेक कर सकते हैं लगता है कि नहीं लगता, और ये स्टॉप लगने की बजाय ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, ऐसा होता है, तो स्टॉप करें तो स्टॉप, स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और अगर स्टार्ट करना है तो अब मन को हमें चिंतन मनन के लिए स्टार्ट भी करना पड़ता है, तो स्टार्ट करना है तो स्टार्ट हो जाए और स्टॉप करना है तो स्टॉप हो जाए। इसको बाबा कहता है कि आवाज में आना और आवाज से परे जाना, दोनों में समय नहीं लगे। और अंतिम पेपर के लिए आज का वरदान क्या था? वरदान याद है आज का? यही था वरदान, अगर पास विद ऑनर होना। अंतिम पेपर में क्या होना है? पास विद ऑनर होना है। तो अगर पास विद ऑनर होना है तो मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? हाँ, तो एक सेकंड, बाबा कहते हैं वो एक सेकंड का क्वेश्चन होगा, और एक सेकंड की बजाय अगर हमें 3 सेकंड लग गए तो उस एक सेकंड के क्वेश्चन, सभी को मालूम है वो क्वेश्चन क्या होगा। बाबा ने कहा ना, परिस्थितियां हलचल में लाने वाली होंगी ना, मन को खींचने वाली स्थितियां होंगी उस समय, लेकिन फिर भी मन एक की लगन में मगन, यानी एक बाबा की याद में ही रहे उस समय, अगर रहेगा तो पास विद ऑनर, और नहीं तो फिर उसी अनुसार नंबर वार हो जाएंगे। कितना समय लगेगा, तो नंबर 1 होंगे, सेकंड क्लास होंगे या फेल होंगे, वो हमारी अंतमति सो गति जो बाबा कहते हैं। तो पेपर का क्वेश्चन भी सबको मालूम है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कहाँ भी मोह का अंश वंश भी होगा तो वो बुद्धि को खींच कर ले जाएगा, चाहे व्यक्ति में हो या वस्तु में हो। नष्टो मोहा होंगे तो ही उस एक सेकंड के क्वेश्चन के पेपर में हम पास हो सकते हैं। तो मन को कंट्रोल करना ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम सोचे नहीं लास्ट में हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। एक कहानी आती है, एक राजा था, उसका कोई वारिस नहीं था, बेटा नहीं था। अब उसकी आयु हो रही थी तो उसने सोचा कि मेरे को कोई उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, अपनी ही प्रजा में से कोई जो योग्य है उसको मैं गोद ले लेता हूँ और फिर उसी को ही मैं घोषित कर दूंगा। तो जो उसको योग्यता चाहिए थी उस अनुसार उसने एक शर्त रखी, जो भी युवक थे उन्हें बकरी को घास खिला के राज दरबार में लाना है, और वो बकरी भर पेट आए ना, पेट भर के खा के आए, और राज्य दरबार में जब उसे घास दी जाएगी खिलाने के लिए, माना जब वो आएंगी बकरियां तो उनको यहाँ भी घास दी जाएगी खाने के लिए, तो वो बकरी घास में मुंह नहीं मारना चाहिए, माना इतना भरपेट होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी घास में मुंह न डाले। तो जिसकी बकरी घास में मुंह नहीं डालेगी वो जीतेगा, यानी वही चुना जाएगा। तो सबको लगा कि ठीक है, बहुत अच्छे से खिला देंगे सारा दिन बकरी को, तो जब पेट भरा होगा तो नहीं खाएगी। लेकिन एक जो था, जो बुद्धिमान था, होशियार था, उसने कहा राजा ऐसे शर्त नहीं रख सकता, और बकरी तो जानवर है, वो घास देखेगी और घास में मुंह ना डाले ऐसा हो नहीं सकता, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ युक्ति करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, जब भी उसको घास चरा रहा था तो वो घास चराते समय जैसे ही बकरी घास में मुंह डालती उसको एक डंडा मारता मुंह पे, तो डंडा खाते ही बकरी थोड़ा डर जाती क्या हो रहा है, जब दोबारा फिर मुंह डालती फिर वो डंडा मार देता, ऐसे कई बार हो गया। तो अब बकरी की मेमोरी में ये फिट हो गया कि घास खाना वाना डंडा पड़ना, सारा दिन वो डंडा खाती रही, जब वह घास खाने जाए तब उसको डंडा पड़े। तो आखिरकार उसने घास में मुंह डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो इतना मार नहीं खाना चाहती थी। अब वो उसको ले गया दरबार में, सभी भी ले आए अपनी बकरियां दरबार में। अब वो तो वही हुआ कि जैसे ही वो तो दरबार में जो घास डाली वो तो और ही एकदम कोमल और एकदम हरी हरी घास थी, तो जैसे ही बकरियों ने देखा तुरंत टूट पड़ी वो घास खाने के लिए, जितना भी उनका पेट भरा हुआ था। लेकिन वो डंडे वाली बकरी, उसने देखा कि वो जो उसका मालिक है वो अभी भी डंडा लेके खड़ा है, तो वो डंडे को देखे और घास को देखे, डंडे को देखे और अब घास खाने की इच्छा तो हो रही है लेकिन डंडा भी दिख रहा है, तो उसने घास में मुंह नहीं डाला और वो जीत गया, शर्त जीत गया और उसको चुन लिया राजा ने और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो हमारे मन की गति भी यही है, बकरी जैसी है कि जितना हम इसको देते जाएंगे यानी जितना इसकी इच्छाएं पूरी करते जाएंगे क्या होने वाली है, और ही बढ़ती जाएंगी, कभी भी कम होने वाली नहीं है। तो मन को डंडा लगाते रहना पड़ता है। कौन सा डंडा? वो वाला डंडा नहीं, बाबा की श्रीमत का डंडा। यानी श्रीमत की लगाम मन पर मजबूत रखेंगे तो हमारा मन कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में आएगा। अगर हम उसको छूट देते हैं, जब चाहे जो चाहे, जैसा व्यक्ति जैसी परिस्थिति उस अनुसार ही तो मन सोचता है, गुलाम, इसको ही तो गुलामी कहते हैं ना, मन की गुलामी करते हैं हम, मन जहां चाहे चला जाता है, जो चाहे करता है। नहीं, लेकिन मन के मालिक बनना, तो मन के मालिक बनने का यही अर्थ है कि श्रीमद के प्रमाण जो सोचना है वही सोचना है, जो स्थिति बनानी है वही बनानी है। तब हम कहेंगे हम मन के अधिकारी हैं। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे मन की स्थिति ऐसी बनी है कि हम एक सेकंड में अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बुद्धि पर हमारा अधिकार है, यानी बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है। तो सही परिस्थिति के अनुसार सही समय पर सही निर्णय बुद्धि कर ले तो हम सफल हो जाते हैं, सफलता मूर्त होते हैं। और अगर नहीं तो फिर पश्चाताप होता है, काश उस समय ऐसे नहीं किया होता, उस समय ऐसे नहीं चला होता या ऐसे नहीं बोला होता। बाबा कहते हैं कि कौन सी शक्ति किस समय यूज करनी है वो भी निर्णय सही होना चाहिए। सहन करने के समय अगर हमने सामना कर लिया, करना चाहिए सहन, पर निर्णय क्या किया, सामना कर लो, तो फिर परिणाम गलत हो जाएगा। या जहां हमें समाना है, समाने की शक्ति को प्रयोग करना है, वहां हमने वर्णन कर दिया तो भी गलत हो गया। ऐसे ही विस्तार को सार में लाना है, मन बहुत विस्तार में जा रहा है, उसको मुझे सार में लेकर आना है, लेकिन हम सार में नहीं ला रहे, उसको और ही विस्तार में ले जा रहे हैं, तो भी गलत निर्णय हो गया। तो सही समय पर वो शक्ति कार्य करे। जो शक्तियां हैं वो बुद्धि का कार्य है कि बुद्धि को हम जहां जैसे जब लगाना चाहें वहां हमारी बुद्धि लग जाए। एकाग्रता किससे होती है? हमारी बुद्धि से होती है। तो बुद्धि का कार्य है ये, तो ऐसे हमारी बुद्धि निर्णय करती है। फिर संस्कार के लिए बाबा कहता है, संस्कार हमारे आदि अनादि संस्कार इमर्ज रूप में रहें। संस्कारों पर अधिकार माना, मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? शांति के, सुख के, प्रेम के, आनंद के, पवित्रता के, ये संस्कार मेरे इमर्ज रूप में रहें। या जो देवताई संस्कार हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वो वाले संस्कार। लेकिन अगर उसकी बजाय पुराने संस्कार आ जाते हैं बीच बीच में, पुराने संस्कार हैं माया रावण के संस्कार, तो माया रावण के संस्कार मध्य के संस्कार हैं, वो आदि अनादि संस्कार नहीं है। कई बार ये भी कहते हैं कि मेरे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, तो बाबा कहते हैं असल में पुराने संस्कार कौन से हैं? हाँ, सबसे पुराने तो आदि अनादि संस्कार हैं, तो पुराने तो फिर वो इमर्ज होने चाहिए। लेकिन जो माया के संस्कार हैं, अगर मानो मैं, हम किसी भी कारण से फीलिंग में आ जाते हैं, कोई भी बात से हम नाराज हो जाते हैं, अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद भी, या मूड ऑफ कर लेते हैं, या फिर हम गुस्से में आ जाते हैं, रूठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, मैंपन में, भाइयों में ज्यादातर रौब या मैंपन वो आ जाता है। तो अगर ये संस्कार आते हैं तो इसका मतलब संस्कारों पर अभी हमारा अधिकार नहीं है, तो हम चेक कर सकते हैं अभी भी हम इनमें चले जाते हैं क्या। कोई भी बातों में जैसे होता है ना, अपमान की फीलिंग आ जाती है, छोटी सी भी बात नहीं सुन सकते किसी की, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया बस 4 दिन तक स्थिति खराब हो गई मेरी, फिर योग भी नहीं लगेगा बाबा से। तो ये मेरे अनादि संस्कार नहीं है, जो बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। बाबा के संस्कार हैं सदा सदा स्नेह के, सदा सहयोग के, सदा रहम के, सदा कल्याण के, सदा दातापन के। लेने वाले नहीं है ना, हम ये सब जो हमारे पुराने संस्कार इमर्ज क्यों होते हैं, लेने की इच्छा के कारण, स्वार्थ के कारण, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, ये क्या है, इच्छा, मंगता बन जाते हैं हम, इसको ऐसा होना चाहिए। और बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। तो अगर हम दाता, राजा माना दाता, राजा देवता नहीं होता, वैसे भी देवता माना देने वाले, हम देवता बनने वाली आत्माएं, माना राजाओं के भी राजा बनने वाली आत्माएं, देवताएं कौन है, राजाओं के भी राजा हैं, क्योंकि आज के राजाएं भी उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो फिर सदा दातापन के संस्कार हमारे इमर्ज रूप में रहें, तो हमारा संस्कारों पर अधिकार है। फिर हमारी जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख, तो आज भी बाबा ने आंखों को याद किया मुरली में, आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, तो कितना अच्छी तरह बाबा ने बताया कि ये आंखें कौन सी होनी चाहिए, सिविल होनी चाहिए, लेकिन हमारी आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं। आज की दुनिया में तो लोगों की है ही क्रिमिनल आई, लेकिन हम बाबा के बच्चे तो फिर भी आत्मा का ज्ञान समझकर, बाबा ने कहा ना ज्ञान समझने से क्रिमिनल पना कम हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, लेकिन पहले कम होता है, एकदम खत्म नहीं होता है। तो दैहिक दृष्टि वृत्ति से बिल्कुल न्यारे, एक दूसरे को कैसे देखना है, आंखों पर अधिकार माना, सदा आत्मिक दृष्टि वृत्ति ही हो, किसी की देह पर मेरी दृष्टि जाए ही नहीं, या किसी के प्रति दैहिक आकर्षण हो ही नहीं। अगर हम किसी के देह को देखते हैं तो फिर हम उसके देह में जो भी विशेषताएं हैं वो देखना शुरू कर देते हैं, है ना, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके फीचर्स ऐसे हैं, इसका रंग ऐसा है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, फिर कोई ना कोई चीज तो हर एक में अच्छी होती ही है, हर एक आत्मा को भगवान कोई ना कोई विशेषता तो देता ही है, फिर क्या होगा, उसके प्रभाव में आ जाएंगे, प्रभाव में आएंगे तो लगाव में भी आ सकते हैं, तो फिर क्रिमिनल आई होती है। क्रिमिनल आई माना वैसे हम कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन दृष्टि वृत्ति कैसी हो गई, दैहिक, देह के आकर्षण में बुद्धि चली जाती है, या उसके बारे में चिंतन, उसकी देह के बारे में चिंतन चलना, इसको बाबा क्रिमिनल आई कहता है। लेकिन बाबा मूलियों में कई बार कहते हैं, जब हम किसी को देखकर बात करते हैं तो कहां देखते हैं, कहां देखते हैं, आंखों में देखकर बात करते हैं। आप किसी से बात करेंगे तो कहां देखकर बात करेंगे, और आंखों के पास कौन है, आत्मा का स्थान कहां है, प्रकृति कहां है, आंखों के साथ ही तो है ना, तो फिर प्रकृति में देखकर बात नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, तो आत्मा को देखना मुश्किल है क्या। तो इसीलिए सदा आत्मा को ही देखना है, किसी की देह पर मेरी नजर जानी ही नहीं चाहिए, जिसकी देह जैसी है साक्षी होकर देखो, वो सुंदर है, कुरूप है, छोटा है, लंबा है, या जो भी, जिसका जो भी शरीर जैसा भी है, वैसे शरीर को मुझे साक्षी होकर के देखना है, सबके प्रति एक जैसी दृष्टि, कोई कैसे भी शरीर वाला है, तब हम कहेंगे हमारी सिविल आई है, आत्मिक भाव और भावना। और फिर उसमें भी बाबा ऐड करता है शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि हो, भाव भी अलग अलग हो सकते हैं ना, तो भावना भी कैसी हो, शुभ भावना शुभ भावना। और तीसरा और ऐड करता है बाबा, गुणग्राही दृष्टि हो, दिखाई क्या दें किसी में, कलयुग की दृष्टि है, कमियां ही दिखाई देंगी, कितने भी गुण होंगे वो नहीं दिखेंगे, एक कमी होगी वो ज्यादा दिखाई देगी, है ना, तो वो हमारी दृष्टि नहीं है अभी। कौन सी दृष्टि? उसके अंदर 35 कमियां हैं, सिर्फ एक ही गुण है, क्योंकि कोई गुण तो है जो बाबा ने चुना है, या नहीं भी चुना है, अज्ञानी भी है, उसमें भी कोई ना कोई गुण तो होता भी है। तो फिर कहां मेरी नजर जानी चाहिए? गुणों पर। फिर कई कहते हैं जी हम तो कलयुग में रहते हैं, और कलयुग में आज कैसे कैसे सीन हमारे सामने आते हैं। दुनिया में रहते हैं ना हम, तो फील्ड में रहते हैं, यहाँ मधुबन में रहते हैं तो सेफ हैं, लेकिन वहां बाहर निकलते ही यहां से कैसे कैसे सीन हमारे सामने आते, क्योंकि पूरा ही क्या बोलते हैं देह अभिमान वाली दुनिया है आज की, जो कलयुगी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया है, पतित दुनिया है। ऐसी ही दृष्टि वृत्ति वाले लोग भी हमें मिलते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य भी, या जो चित्र भी होते हैं, विज्ञापन भी होते हैं, जो भी आप देखो सब किससे भरे पड़े हैं, अश्लीलता से भरे पड़े हैं, समझो अगर सीधे सीधे शब्दों में कहो तो वो सब देखते हुए भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, है ना। आंखें बंद तो नहीं कर लेंगे, कर लेंगे क्या आंखें बंद? आजकल जो कई सन्यासी होते हैं ना, उनका पंथ में ऐसे होता है स्त्री को देखते ही नहीं है, कि ना देखेंगे और ना, जैसे आज बाबा ने कहा ना, कई अपनी आंखें ही फोड़ लेते हैं, तो आंखें फोड़ने की तो बात नहीं है, हाँ, तो आंखों को सिविल बनाना है, जो सूरदास जी के लिए कहते थे कि सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली कि मेरी इंडस्ट्री किसी के ऊपर जाए ही नहीं, सिर्फ भगवान को ही मेरा मन, मेरे मन रूपी आंख सदा भगवान को ही देखे, तो वो बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति बदल चुकी है, और बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, हमें समय का भी ज्ञान है कि वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो हम विश्व परिवर्तक हैं, तो हम ही वायुमंडल को बदलने वाले, ना कि हम उस वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले। अब घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, अब घर में चार चार टीवी तो नहीं लगे होते, अब एक कमरे में बच्चे भी हैं, आप भी हैं, तो बच्चे तो देखेंगे ना। अब आप उठकर जा सकते हैं तो जाएंगे, और नहीं जा सकते तो वहीं बैठे हैं, पर देखते हुए भी नहीं देखना, मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना है, जो भी चल रहा है वो साक्षी होकर के देखने का यही अर्थ है। तो आंखें हमारी सदा कंट्रोल में रहें, जो बाबा ने हमें श्रीमद् दी कि आंखें पवित्र हैं, हमारी सिविल हैं, वही देखती हैं जो बाबा ने हमें वो तीसरा नेत्र दिया है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता वो भी हम देख सकते हैं, माना जो स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देता वो हम तीसरे नेत्र से देख सकते हैं, तो वही हम देखें, इस देह और देह की दुनिया से पार जो हमारा स्वरूप है, जो बाबा का स्वरूप है, जो हमारा परम धाम है वो। फिर हमारा मुख पर अधिकार, माना मुख के लिए क्या श्रीमत है वो तो हम सब जानते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। तो कम बोलना ना? तो बाबा का बनते ही बाबा हमें मंत्र देते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी, जितना हो सके, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना है। अगर 10 शब्दों का जो बात है, अगर वो 2 शब्दों में हमारा काम चल सकता है तो हम 2 शब्द ही बोलें, क्योंकि जितना मौन का अभ्यास हम करेंगे उतना बाबा के साथ हमारा संबंध क्लियर होगा। मौन हमारी शक्ति को बचाता है, वाणी हमारी शक्ति को खर्च करती है। तो कई लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है ना, वो बोले बिना रह ही नहीं सकते हैं, और अगर उनको बोलो कि आज मौन रहना है तो लगता है सजा ही दे दी किसी ने, ना जैसे भट्टी में आते हैं और आपको कहते हैं 3 दिन बिल्कुल मौन, और 3 तरह का मौन, मुख भी ना बोले, मन भी मौन में रहे, और फिर मोबाइल भी बंद हो जाए, तो फिर क्या होता है? कईयों को तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह, इधर इससे अच्छा सुख तो और क्या मिलेगा, और कईयों को लगता है ये क्या बांध दिया हमको, बंधन में बांध दिया, बोलना ही नहीं है, किसी से बात भी नहीं कर सकते, तो वो चुप होते ही नहीं है, माना मौन रख ही नहीं सकते हैं। कितने लोगों ने सही में मौन रखा है? देखो गिनती के हाथ हैं। तो मौन रखना कितना मुश्किल है ये हम समझ सकते हैं ना। पता है भट्टी में आए हैं, अगर 3 दिन हम मौन करेंगे तो जितना हमारी चार्जिंग होगी वो हमारी साल भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी। इतना सुंदर अनुभव होता है उसका। लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम चुप नहीं रह सकते। कई बार बाबा कहते हैं अच्छा चलो सारा दिन तो हमारा काम होता है, यहाँ तो कोई कारोबार नहीं है, रह सकते हैं लेकिन वहां तो चलो हमारा कारोबार होता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय, ये तो हमारा अपना समय है, अमृत वेला करना, मुरली सुनना, इस समय भी हम मौन रखें। माना दोनों तरह से चुप, मन का भी मौन और मुख का भी मौन हमारा रहे, तो भी वो सारे दिन के लिए हमें शक्तिशाली बना देगा। तो इतना तो हम अभ्यास कर सकते हैं। और अगर मौका मिलता है कभी तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार हम साइलेंस रखें। छुट्टी वाला दिन तो सभी के पास होता है कि नहीं होता? तो कोई छुट्टी वाला दिन जिस दिन हम ऐसा कर सकते हैं उस दिन हम मौन रखें। तो कम बोलो ये लक्ष्य, क्योंकि वाणी में ताकत आती है। जितना हम कम बोलते हैं हमारी वाणी उतना ही शक्तिशाली होती है। फिर धीरे बोलो, बाबा कहता है तो मेरा जो वॉल्यूम हो बोलने का वो कैसा होना चाहिए? रॉयल होना चाहिए, है ना। कई लोगों की आवाज ऐसी होती है जैसे वो गुस्सा कर रहे हैं, फिर बोलो तो बोलो नहीं ये तो मेरी आवाज ही ऐसी है। तो फिर ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसी आवाज होनी चाहिए जो सुनने में प्रिय लगे, है ना। जैसे हाँ कोयल की तरह। कबीर दास जी ने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, है ना। तो मेरी वाणी ऐसे ना प्रतीत हो किसी को कि भाई ये तो मेरे ऊपर गरज रहे हैं या मेरे ऊपर बरस रहे हैं, है ना। कई बार गुस्से में भी जब हम होते हैं तो वैसे गुस्सा नहीं करते लेकिन हमारी टोन ही बदल जाती है, बोलने का जो लहजा होता है ना उससे ही सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो ऐसी वाणी हमारी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं माइक का वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये तो साधन है। तो आपके मुख के माइक का वॉल्यूम आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो? कर सकते? नहीं कर सकते। तो वो भी तो मेरे कंट्रोल में है ना। तो मेरे मुख का इतना ही वॉल्यूम होना चाहिए जिसको मैं सुनाना चाहती हूँ वो ही सुने, उसके बाद तीसरा व्यक्ति को भी वो सुनाई ना दे। फिर मीठा बोलो, मीठा बोलो तो मीठा वचन माना जो हमारी वाणी सुख देने वाली है, जो किसी को उमंग उत्साह में लाने वाली है, किसी को हिम्मत देने वाली है या किसी के आशा को बढ़ाने वाली है, ऐसे बोल हमारे होने चाहिए जो हमारे बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, जो भी मिले उनसे जबी भी उन्होंने क्या अनुभव किया, बाबा के वचन कैसे थे उनके प्रति, कैसे थे, वरदान ही बोल जैसे कहेंगे ना, वरदान मिल गया। बस बाबा कुछ बोले हमारे लिए या दादियां हमारे लिए कुछ बोले वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो उतनी पावर जिसको बाबा कहते हैं सत वचन महाराज, वो कब होता है जब हमारी वाणी इस प्रकार की हो। लेकिन हम कड़वा कब बोलते हैं, कड़वा कब बोलते हैं, मीठे की बजाय कड़वे कब हो जाते हैं, सबको पता है। क्योंकि अगर मैं पूछूं कि किसने अपने गुस्से को जीत लिया है तो पता नहीं मुश्किल से कोई हाथ उठाएगा। हाँ तो अगर हम जरा भी क्रोध में आते हैं तो हमारी वाणी कैसी होती है, कौवे जैसी। तो फिर हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें ही पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं और वो हमेशा दुख पहुंचाते हैं। कटु वचन होते हैं, गुस्से में कहे गए वचन हमेशा कटु वचन होते हैं और फिर उससे किसी का अपमान ही होता है, किसी को दर्द ही पहुंचता है। इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला तो शायद भूल जाएगा, सुनने वाला नहीं भूल पाता है और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है। संबंधों में प्रेम खत्म हो जाता है। कितने भी अच्छे संबंध होंगे, आपने एक बार गुस्सा कर दिया, जोर से कोई बात ऐसी कह दी, वो गांठ पड़ी जाएगी ना। इसलिए वो रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जुड़ेगा तो भी गांठ तो होगी होगी, आप कितना भी माफी मांग लो, कितना भी कुछ, फिर उसके बाद उसको स्वीकार कर लो, लेकिन वो प्रेम जो पहले वाला होगा वो नहीं होता है। माना कटु वचन का इतना ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, कई बार तो संबंध टूट भी जाते हैं। तो ऐसी वाणी ब्राह्मणों की, बाबा के बच्चों की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी के भी प्रति, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, है ना। बच्चों पर तो हम पूरा अधिकार समझते हैं ना, माँ क्या समझती है, अगर मैं इसको डांटूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं, तो ये पढ़ने वाला नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं है, फिर हम उसको ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, पागल है, बुद्धू है, गधा है, ये कहने के लिए भी बाबा मना करता है। और हम सोचते हैं ऐसे, ये तो होता ही है ना, मतलब होता ही है, माना नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो बच्चों को ऐसे ऐसे शब्द बहुत इजीली माताएं बोल देती हैं। अभी तक भी ब्राह्मण बनने के बाद भी हम इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, अरे पागल है, सुधरने वाला ही नहीं है कभी। तो ऐसे वचन भी बाबा कहते हैं, ब्राह्मण हो ना आप, पवित्र आत्माएं हो, अगर ऐसे शब्द बोलते हो तो भी श्रापित करते हो किसी को। जो आपके वचन वरदान हो सकते हैं, वही वचन क्या हो सकते हैं। तो इतने भक्ति में यादगार क्यों बने, इसीलिए बने ना, श्राप के और वरदान के जो यादगार बने वो वचनों के कारण ही, कि कैसे वचन हम अपने मुख से उच्चारण करें। और बाबा के लिए तो हमारी दादियां सुनाते थे, जो दीदियां भी हैं जो ब्रह्मा बाबा से मिले, तो कहा बाबा उस समय हमें इतनी ऊंची ऊंची बातें कहते थे, हमें समझ में ही नहीं आती थी कि बाबा क्या कह रहा है। अब जैसे विश्व कल्याणकारी बच्ची है, तो विश्व कल्याणकारी मुझे समझ में ही नहीं आता क्या विश्व कल्याणकारी होता है, तो उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन भविष्य में सचमुच हम वो बन गए जो बाबा ने हमें कहा ना। वरदान होने का मतलब वही हमारे लिए सत्य सिद्ध हो गया। तो ऐसे वचन हमारे हों कि कभी भी किसी को दुख ना पहुंचे हमारे वचनों से, बल्कि और ही वो आत्मा आगे बढ़े, चाहे उसकी जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनमें और वृद्धि हो, जिसको प्रोत्साहन देना हम बोलते हैं, कि हम उसको प्रोत्साहन देने वाले हों, ऊपर उठाने वाले हों। और फिर सोच समझ कर बोलो, वो तीन बंदर बताते हैं गांधी जी के, बाबा ने चौथा और जोड़ दिया, वो तीन, हमारी नलिनी दीदी का वो फोटो बना हुआ है ना, कि बुरा मत देखो, वो नहीं, कान आंख मुख बंद करके, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो। तो बाबा ने हमें सोचना भी, बुरा किसी के प्रति बोलना तो बात की बात है, लेकिन सोचना भी, सोच समझ करके भी हमें वो वाणी निकालनी है। फिर कानों पर हमारा अधिकार, हाँ इस पर एक कहानी मुझे याद आती है। देखो ना, कौन व्यक्ति कितना रॉयल है उससे पता चलता है। एक बार एक संत थे, वो अंधे थे, तो अपने जंगल में कुटिया बनाकर भगवान का भजन भूचन करते थे। तो राजा जो है वो अपने मंत्री और सिपाही के साथ शिकार खेलने के लिए गया, तो शिकार का पीछा करते करते तीनों ही एक दूसरे से बिछुड़ गए। अब तीनों एक दूसरे को ढूंढने लगे, तो उसी, कोई किसी दिशा में जा रहा है, कोई किसी दिशा में, लेकिन वो जो संत की कुटिया थी, वो कुटिया के पास से पहले सिपाही गुजरा, तो उसने सोचा कि शायद इसको पता हो कोई निकला है यहां से, कोई आया, किसने मेरे बारे में पूछा। तो उसने उसको पूछा, तो उसने, वो समझ गया उसको देख कर कि अंधा है, तो उसने सीधे ही बोला, ये अंधे, यहां से कोई गया, किसी ने मेरे बारे में पूछा। तो उसने कहा, नहीं यहां से अभी तक तो कोई नहीं गया। तो वो सिपाही आगे चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मंत्री ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया, फिर उसने भी देखा कि ये अंधा है, संत है, अंधा है। तो उसने थोड़ा रिस्पेक्ट से बोला, अंधे बाबा, यहां से कोई गुजरा, किसी ने मेरे बारे में पूछा। तो उसने कहा, हाँ एक सिपाही गया था यहां से, उसने पूछा कि कोई यहां आया है। तो शायद आपके बारे में ही पूछ रहा होगा। फिर वो मंत्री निकल के गया वहां से, तो राजा आया ढूंढता ढूंढता, राजा ने भी देखा उसको, वो भी समझ गया। पर राजा ने उसको संबोधित किया कि महाराज, क्योंकि वो देखा उसने कि वो संत है, तो उसने कहा कि महाराज यहाँ से कोई गया मेरे बारे में किसी ने पूछा, तो उसने कहा हाँ राजन, राजन आपका सिपाही और मंत्री अभी अभी यहाँ से होकर के गए हैं। तो उसको आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि आपको तो दिखता नहीं है, आपको कैसे पता चला कि मेरा सिपाही और मंत्री मेरे से पहले यहाँ से पूछ कर गए हैं। तो उसने कहा कि आपकी वाणी से, जो सिपाही था उसकी वाणी उसी तरह की थी, फिर जो मंत्री था उसकी वाणी उस प्रकार की, हाँ थोड़ी बेहतर थी, और आप राजा हैं तो आपकी वाणी उतनी ही रॉयल, उतनी ही श्रेष्ठ है। तो वाणी से व्यक्ति की पहचान कि वो कितना सभ्य है उसकी पहचान होती है। और जब हम कानों की बात करते हैं तो कानों पर अधिकार माना, कान के लिए श्रीमद् बाबा की है, क्या सुनना है हमें, क्या सुनना है, ज्ञान ही सुनना है, या जो हमारे लिए काम की बातें हैं वही हमें सुनना है, उसके अलावा जो भी हम सुनते हैं जिसको बाबा पर चिंतन कहता है, दूसरों के बारे में या कोई भी कथा कहानियां इधर उधर की, तेरी मेरी की बातें, पर चिंतन पर दर्शन की बातें हमारे कान में नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये कनरस भी नहीं छूटता है। कनरस क्यों कहा इसको, क्योंकि ये जब दूसरों की कथा कहानियां सुनते हैं तो उसमें बहुत रस आता है। जैसे द्वापर युग से कहानियां सुनने की आदत है ना, तो जो भी दूसरी कहानियां हैं, शास्त्रों की कहानियां, रामायण की कहानी, भागवत की कहानी, या जो भी महाभारत की कहानी, हमारे जो भी पुराण हैं उनमें सब में कहानियां हैं, तो भक्ति मार्ग में कहानियां सुनते सुनते हमें वो आदत पड़ गई है। तो अभी भी संगम युग में भी जब कोई ऐसी कथाएं करता है किसी की, तो हम इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। हाँ अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा वो ऐसे करते हैं, माना जो भी, तो हम उस बात को बढ़ाते हैं सुनने के लिए। लेकिन बाबा क्या कहता है, मानो कोई सुनाता है तो हम उसे उसकी विशेषता बता करके चुप कर दें। हाँ क्योंकि ये होते हैं ना उल्टे समाचार की लेन देन, उल्टी बातों की लेन देन वो है, तो हमें जो लेन देन करनी है वो हम करें उनके साथ। और अगर मानो हम मना कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो सुनाने वाला है वो हमसे बड़ा है और हम उसको ना नहीं कर सकते, माना एक रिस्पेक्ट रखते हैं उसका कि ठीक है जो सुना रहे हैं हमें सुनना ही पड़ेगा, तो फिर दो कान भगवान ने दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, उसको अंदर नहीं ले जाना है। पर होता यह है कि कई बार दूसरे कान से हम नहीं निकाल पाते क्योंकि बीच में दिमाग आ जाता है, और कहते हैं कान का शेप ही क्वेश्चन मार्क का है, तो शुरू हो जाता है दिमाग शुरू हो जाता है क्वेश्चन करना, अच्छा ये ऐसे भी हैं, मैंने तो नहीं सोचा था ये ऐसे भी करते होंगे, ये ऐसे भी चलते होंगे, या जो भी। फिर दूसरे कान से निकालने की बजाय फिर हम मुंह से निकालते हैं, और मुंह से निकालते हैं तो कई बार बात बिगड़ जाती है, बिगड़ती है माना जब सामने वाले को पता चलता है ना, कई बार जब बातें फैलती हैं, क्योंकि ऐसे ही फिर हम वातावरण को कमजोर करते हैं, ऐसी बातें फैलती जाती हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और कई बार अर्थ के भी अनर्थ हो जाते हैं, वो बात जैसी होती है वैसी नहीं फैलती। कैसे फैलती है, हरेक ने उसको जैसा समझा वो अपना भाव उसमें मिक्स करता जाता है, और जैसे कहा कि बात बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ना, लेकिन हम करते हैं जो बातें फैलती हैं। कई बार ब्राह्मण परिवार में भी किसी किसी के बारे में ऐसी बातें, आजकल तो मीडिया है ना, और बीबीसी बोलते हैं, बीबीसी बहुत फास्ट न्यूज वाला होता है ना, तो वो बीबीसी हमारा भी है, बीबीसी माना ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्राह्मणों में भी कोई कम स्पीड से नहीं फैलता, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा अभी कोई कम पावरफुल नहीं है, फटाफट फैलते हैं। तो हम कई बार शिविर में कहानी सुनाते हैं, कहानी हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो एक बार एक पंडित थे, उनको गांव से शहर जाना था, गांव में रहते थे, उनको शहर जाना था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए खाना पैक कर देना, क्योंकि हो सकता है आने में देर हो जाएगी। तो उसने टिफिन बना दिया। अब रास्ते में वो खाने के लिए बैठे, तो खाने के लिए जब बैठे तो पेड़ के नीचे ना तो ऊपर डाली पे पक्षी बैठा था, वो पक्षी ने उसी समय बीट कर दी, तो बीट उसके खाने पर पड़ गई। तो खाने पे बीट पड़ी तो वो पंडित थे तो उनका मन बदल गया, क्योंकि ऐसा खाना वो खा नहीं सकते, तो छोड़ दिया। उन्होंने सोचा शहर नहीं जाते हैं, फिर कभी जाएंगे। घर आ गए वापस, तो पत्नी ने पूछा आप तो शहर गए थे, अभी इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको पता था कि मैंने इसको बताया ना पूरे गाँव को पता चलेगा। तो थोड़ा टालने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे ही पड़ गई, क्यों आप इतना जल्दी आ गए? तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे हुआ, जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरे खाने में पक्षी की बीट पड़ गई, फिर मेरा विचार बदल गया। अब तू ये बात किसी को कहना मत, थोड़ा उन्होंने जोर देके कहा उसको कि किसी को कहना मत। उसने कहा मैं क्यों कहूंगी, नहीं कहूंगी। दूसरे दिन वो गई कुएं पे पानी भरने। व्यक्ति ना अपनी आदत से मजबूर होता है, वो तो भूल ही गई वहां जाकर के जो भी उसकी सखी सहेलियां थी, उसने वो सारी बात उनको सुना दी कि पंडित जी के साथ कल ऐसा हुआ। अब सारे लोग एक जैसी नहीं सुनते हैं बात, कुछ लोग आधी आधी सुनते हैं। आधी आधी सुनते माना, एक ने क्या सुना, पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट पड़ गई, उसकी जगह सुना पक्षी पड़ गया, पक्षी गिर गया। फिर उसने जाकर के चार लोगों को बात की, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। अब उसने आगे जाके चार लोगों से बात की, तो उसमें से एक ने समझा पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। तो पंचायत तक पहुंची, पंचायत ने सोचा हमारे पंडित जी चमत्कार करते हैं, हमें पता ही नहीं आज तक, देखना चाहिए कैसे पक्षी निकालते हैं। तो उनको बुलाया उन्होंने पंचायत में। पंडित जी सोचने लगे मुझे पंचायत में क्यों बुलाया है, क्या किया है मैंने जो पंचायत में बुलाया है। वहां गए तो पता चला कि पक्षी निकाल कर दिखाना है। तो सोचने लगे ये बात कहां से आ गई, पक्षी निकाल के दिखाना है, वो मुंह से पक्षी निकाल के दिखाना है। तो दिमाग चलाया तो सोचा ये सब पत्नी का काम है। फिर सोचने लगे अब क्या करना है, क्या जवाब देना है। तो जब उनको कहा कि पक्षी निकाल कर दिखाना है, तो कहा निकाल सकता हूं, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो पक्षी बन जाएगा। तो सब चले गए। तो अब कहानी सुनाने का भाव क्या हुआ, बात क्या थी और फैलते फैलते वो क्या से क्या हो गई। हाँ, तो ये स्थिति होती है जब कोई भी बात फैलती है तो उसी रूप में वो कभी भी नहीं फैलती, जो सच्चाई होती है वो उससे बिल्कुल ही अलग होती है। तो इसीलिए कभी भी ऐसी बातें जब फैलती हैं तो हमें विश्वास नहीं करना है उस बात पर। जैसे होता है ना आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, अच्छा ये ऐसे ही होगा, इसने ऐसे ही किया होगा, नहीं। तो इसीलिए कहा कि कानों पर हमारा कंट्रोल हो और फिर बोलने पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बाबा कहता है अगर हम ऐसी बातें करते हैं, मानो हम इसको छोटी छोटी बातें समझते हैं, कई बार हम सोचते हैं क्या छोटी तो बात है, लेकिन ये सूक्ष्म पाप का बोझ आत्मा पर चढ़ता जाता है। और ये बाबा की भी अवज्ञा हम करते हैं तो फिर योग पर असर आ जाता है, कि फिर जब हम योग में जो अनुभव करना चाहते हैं वो योग में हमें अनुभव नहीं होता, हमारा योग लगता नहीं, उतना पावरफुल योग हमारा फिर होता नहीं, क्योंकि आत्मा के ऊपर वो बोझ है। तो इसीलिए बाबा ने जैसे रोज अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया, ब्रह्मा बाबा ने, सुनते हैं ना हम, ऐसे ही हमें रोज अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है। और उसमें भी सबसे ज्यादा हमें अपने मन बुद्धि को, क्योंकि मन मंत्री है, और बाबा भी अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखते थे, अपने मन को ज्यादा चेक करते थे कि मेरा मन आज मेरे वश में रहा या मैं मन के वश में हो गया। तो रोज हमें चेक करना है। कई बार कई सोचते हैं ना कि हम क्या बनेंगे, बाबा तो हमें कहता है जो भी हम पुरुषार्थ करेंगे हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या सभी राजा बनेंगे या प्रजा भी तो बनेगी, दास दासी भी तो बनेंगे, तो हम क्या बनेंगे, तो हम क्या बनेंगे। बाबा कहता है रोज एक दिन अपना चार्ट चेक कर लो। ज्ञान रूपी दर्पण बाबा ने हमें दिया है, उस दर्पण में अपने आप को देख लो, समझ में आ जाएगा हम क्या बनने वाले हैं। तो फिर यही कि मेरे मन मेरे वश में है या मन के वश में मैं हो जाती हूँ, या संस्कार मेरे अधिकार में है या संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, या बुद्धि को जहां लगाना चाहते हैं वहां लग जाती है या नहीं लगती है, देख सकते हैं हम। फिर हमारी जो भी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, हमें पता है कि हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हमारे कितने कंट्रोल में है, कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा तो नहीं दे रही। तो अगर कभी हम अधिकारी हैं और कभी हम अधीन हो जाते हैं, तो बाबा कहता है आधा समय आपका निकल जाएगा, आधा समय के बाद फिर आपको राज्य मिलेगा। पूर्ण समय यानी आधी समय से आप राज्य अधिकारी नहीं बन पाएंगे। और अगर बार बार वशीभूत होते हैं, एक होता है कभी तो अधिकारी हैं कभी वशीभूत होते हैं, लेकिन कोई होते हैं बार बार ही वशीभूत होते हैं, कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा दे रही है, कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा दे रही है, ऐसे कहते हैं ना चूहा निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली निकालते हैं तो ऐसी स्थिति है, तो फिर राज्य अधिकारियों के राज्य में आएंगे यानी प्रजा बनेंगे। तो प्रजा बनने वालों की ये क्वालिटी होगी। और अगर संस्कारों के वश होकर के उदास हो जाते हैं, है ना, अगर बार बार धोखा खाते हैं तो निश्चित है उदास होते हैं, परेशान होते हैं यानी अपनी शान से परे हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंछते रहते हैं किसी भी बात को लेकर के, उलझन में आ जाते हैं, जैसे कहा ना फीलिंग में आना, ये सारी स्थिति मन की बनती है, तो फिर क्या बनने वाले हैं, दास दासी बनने वाले हैं। तो हम अपने को चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी स्थिति है अभी। बाबा कहता है साहूकार कौन बनेंगे, साहूकार वो बनेंगे जिनके पास ज्ञान का खजाना है और जो भी सेवा करते हैं उसका पुण्य भी उनके पास है, लेकिन समय पर वो ज्ञान को प्रयोग करके सफल हो जाएं, सफलता मूर्त बन जाएं, ये कंट्रोलिंग पावर उनमें नहीं होती। जैसे आज के पंडित होते हैं, उपदेश तो बहुत करते हैं लेकिन खुद वैसे नहीं, वो जिसको बाबा कहता है ना कि राम राम कहो पार हो जाएंगे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो वो आत्माएं जो हैं, ऐसी आत्माएं जो बहुत ज्ञान दान करते हैं और बहुत सेवा करके पुण्य भी करते हैं लेकिन अधिकारी नहीं है, वो साहूकार प्रजा में साहूकार पद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं बन जाते हैं। फिर अभी हमें राजा बनने का मतलब है स्वयं के राजा बनना, दूसरों के राजा नहीं बनना है। दूसरों के राजा बनना, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, दूसरों को अपने ऑर्डर में चलाना, कोई चलेगा? दूसरों को हम ऑर्डर पर नहीं चला सकते, लेकिन अगर हम खुद को ऑर्डर पर चलाते हैं, अगर हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो फिर जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो लौकिक हैं चाहे वो अलौकिक परिवार हैं, वो स्वतः ही हमारे स्नेही और सहयोगी होंगे, हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर ये ऑर्डर चलाना नहीं चल सकता है, संगम युग पर हम सेवाधारी हैं, वो राजा नहीं है। कौन से राजा हैं? खुद के राजा हैं, स्वयं के हम राजा हैं। तो इस तरह से हम यदि प्रतिदिन अपना राज्य दरबार लगाते हैं, जो हमारा संगम युगी स्वराज्य दरबार है, उसमें बाबा कहता है इस राज्य दरबार में सदा ही सुख शांति संपत्ति, जिसको एक राज्य एक धर्म एक भाषा जो हम कहते हैं ना, इसकी विशेषता है, इस राज्य की विशेषता क्या है, एक धर्म एक राज्य है ना, तो ये एक मत और सुख शांति समृद्धि से संपन्न होना चाहिए, तो वो स्वराज्य दरबार है हमारा। तो कौन सा एक धर्म, तो पवित्रता का धर्म, जिस राज्य में सदा पवित्रता है, मन वचन कर्म से पवित्रता है। फिर एक मत यानी श्रीमत, माया की मत जहां बिल्कुल भी नहीं चलती है, तो माया की मत नहीं लेकिन श्रीमत पर चलने वाला राज्य, और सुख शांति समृद्धि में परमात्म प्राप्तियों का सुख, जो हद की प्राप्तियां हैं उसके सुख की बात नहीं, लेकिन जो आत्मिक और परमात्मा से मिलने वाला सुख, अतींद्रिय सुख है, वो सुख हमें अनुभव हो। और जो संपत्ति है, समृद्धि है, वो है ज्ञान गुण शक्तियों की संपत्ति से भरपूर, तो फिर सदा संतुष्ट होंगे। ऐसा राज्य है तो उसकी निशानी क्या है, सदा संतुष्टता। सदा संतुष्टता माना सदा दाता, जो कहा हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या होंगी, ऐसा राज्य हमारा अभी वर्तमान में हो तो। भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी या तत्नशीन बनना, यानी सर्व कर्मेंद्रियों पर अगर हमारा अधिकार है स्थूल सूक्ष्म, तो तत्नशीन बनने वाले हैं। भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी सतयुग के आदि से ही बनने का अधिकार होगा। तो हम सबका लक्ष्य क्या है, सब क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्मी और नारायण। कोई राम सीता बनना चाहता है, हाथ उठा सकते हैं अगर कोई बनना चाहता है तो हमने, हालांकि राम सीता भी कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम हाथ किस में उठाएंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने में। तो फिर अगर वो बनना है तो फिर पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, ब्रह्मा बाबा के समान। तो इसीलिए सी फादर फॉलो फादर, ना सी ब्रदर सिस्टर नहीं करना, ये भी तो ऐसे करते हैं, इसलिए मेरा भी ऐसे हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा बाबा को हमें फॉलो करते हुए, जैसे बाबा ने अपना दरबार लगाया पुरुषार्थ किया, ऐसे ही हमें भी पुरुषार्थ करके वो नंबर वन पास विद ऑनर होना है। ओम शांति,
ओम शांति। अच्छा, कहते दीदी डॉक्टर्स भी है ना, तो इसीलिए दीदी के एपिसोड आते हैं, अगर आपने यूट्यूब पर देखा हो तो दीदी छोटे छोटे टिप्स लेकर के बहुत अच्छे एपिसोड शॉर्ट्स आते हैं। तो दीदी जी का हम सभी दो हाथ की तालियों से आभार व्यक्त करेंगे। और विशेष जो संडे की मुरली चली उसके ऊपर पूरी क्लास का रिवीजन कराया दीदी ने, तो आज तो लास्ट डे है पट्टी का सबका, तो सब बहुत अच्छी तरह से जो सुना वो समाया भी होगा, है ना, कैसा अनुभव लगता है, बहुत अच्छा ना? तो अच्छा के थोड़े दिन के लिए तो अच्छा नहीं ना, जैसे कल डॉक्टर सचिन भाई ने बताया था डीप रूटेड संस्कारों को देख करके चेक करके उसको निकालना भी है हमें, है ना। तो अभी भी संपन्नता में आधा दिन तो आपका बाकी है, और शाम को आदरणीय हमारे राजू भाई जी आएंगे, और शाम को 5 से 6 योग रहेगा, और आज किसको पत्र लिखना है 4:30 से 5 में, सतगुरु को पत्र लिखना है, हाँ, और 5 से 6 योग रहेगा, और 6 से 7:30 हमारे आदरणीय राजू भाई जी क्लास कराएंगे, और फिर भोजन के बाद रात को 8:30 से 9:30 सचिन भाई का नहीं अरुणा बेन का क्लास रहेगा अभी सिलो दीदी ने बोला कि रात को आपको क्लास कराना है, तो इसलिए हम 9:30 बजे तो साथ में है, पूरे कल्प में भी साथ में ही रहने वाले हैं। दीदी कल गोपी दीदी ने सबको फाइनल पक्का कराया कि फोटो नहीं निकालेंगे। हाँ, बोले फोटो की जगह सब दृष्टि लो, वो दृष्टि कल्प भर चलती है। बोले जहां भी मिलेंगे ना तो लगेगा कि हाँ इसको कुछ जाना पहचाना है। हाँ, फोटो खींचना देह अभिमान है। और अभी एक टीचरों के लिए भी खुशखबरी जी। अच्छा, ब्रह्मा बाबा फोटो नहीं खींचने देते थे। तो दीदी जी, ये सारे जो फोटोज है बाबा के पार्टियों के साथ का, ये सब कुछ तो
ये जो फोटो हैं पार्टियों के साथ के, तो वो ऐसे है ना कि जब मानते नहीं हैं, नहीं बाबा खिंचवाना ही है आपके साथ हमारा फोटो, तो फिर बाबा भी बच्चों की इच्छा रखने के लिए फिर ये फोटो खिंचवा लेते थे, लेकिन बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि उनका फोटो खींचा जाए। हाँ, जो इसीलिए इतने कम फोटो हैं, बहुत ज्यादा बाबा के फोटो नहीं है, उसका कारण यही है कि बाबा जो है वो बहुत पसंद नहीं करते थे फोटो खिंचवाना, कि बच्चे देह अभिमान में आ जाएंगे फोटो देखकर।
सिंहासन में हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन में हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए, मस्तक सिंहासन से हम राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।